پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر سیڈرک فرینکلین. ہمارا یہ پروگرام ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر پاکستان اور بھارت کے لیے, جبکہ دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر براہ راست نشر ہو رہا ہے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, جہاں آپ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے, شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. جبکہ اس پروگرام کو اس وقت ہمارے اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر بھی لائیو سنا جا سکتا ہے, جہاں آپ کو اس کا لائیو براڈ کاسٹ لنک دستیاب ہے. جبکہ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد مستقل طور پر ہر دم رواں زندگی کے فیس بک پیجز پر پوسٹ کر دی جائے گی, جسے آپ کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے, شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. اور آپ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر, یعنی اس پروگرام کے فیس بک پیجز پر بھی لائیو سن سکتے ہیں, جہاں آپ کو اس کا براڈ کاسٹ لنک دستیاب ہے. ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahaizindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasminjameelvoaurdu. تو لیجیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہماری آج کی مہمان ہیں انٹرنیشنل سینٹر فار جرنلسٹ یا ICFJ اور امریکی محکمہ خارجہ کے تعاون سے یہاں امریکہ میں ایک تربیتی پروگرام میں شرکت کے بعد پاکستان واپس جانے والی الیکٹرانک میڈیا سے متعلق پاکستانی صحافی خواتین کے ایک گروپ کی کچھ نمائندہ ارکان. اور صرف خواتین صحافیوں پر مشتمل 5 ہفتوں کے لیے تربیت پانے والے اس ایکسچینج گروپ کی نمائندگی کے لیے ہماری مہمان ہیں یوما اریزونا میں اپنا تربیتی کورس مکمل کر کے پاکستان واپس جانے والی ایکسپریس نیوز لاہور کی ایسوسیٹ پروڈیوسر اسما تبسم. ہماری مہمان ہیں اریزونا کے ایک میڈیا چینل پر ایک تربیتی کورس مکمل کرنے کے بعد پاکستان واپس جانے والی پی ٹی وی اسلام آباد کی رویش رفیق. ہم نے دعوت دی ہے ڈینور کولوراڈو کے ایک میڈیا چینل سے اپنا تربیتی کورس مکمل کر کے پاکستان واپس جانے والی سما ٹی وی کراچی کی کاپی ایڈیٹر اور بلاگر امبرین سکندر کو. اور ہماری مہمان ہیں کلیولینڈ اوہایو کے ایک میڈیا چینل سے وابستہ رہ کر پاکستان واپس جانے والی لاہور پاکستان کے دن میڈیا گروپ کی پروگرام اینڈ نیوز اینکر انم کاظمی. ہماری ویب سائٹ پر اس پروگرام کو سننے کے لیے ہمارا لنک ہے urduvoa.com. اور ہمارے مہمانوں کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/voaurdu اور ہمارے دوسرے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahaizindagi اور facebook.com/yasminjameelvoaurdu. اور ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ ہم نے پاکستان کے انصافی خواتین سے گفتگو گزشتہ دنوں ان کی پاکستان روانگی کے موقع پر ریکارڈ کی تھی. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پاکستان کے دن میڈیا گروپ کی پروگرام اینڈ نیوز اینکر انم کاظمی سے, جو کلیولینڈ اوہایو کے ایک میڈیا چینل سے وابستہ رہ کر پاکستان واپس جا رہی ہیں. السلام علیکم انم کاظمی صاحبہ.
السلام علیکم.
بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی کے سننے والوں کے لیے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا. کچھ بتائیے کہ آپ جس پروگرام کے تحت یہاں پر آئیں وہ کیا تھا اور اس کے تحت آپ اب تک کیا کچھ سیکھ کر واپس جا رہی ہیں؟
میں یہاں پر انٹرنیشنل سینٹر فار جرنلسٹ کی ایز اے فیلو ممبر بن کے آئی تھی, اور یہ پروگرام جو ہے وہ میرا 1 مہینے کا تھا. اس 1 مہینے کے پروگرام میں ہم نے نہ صرف امریکن کلچر کو جانا بلکہ یہاں پر میڈیا کس طرح سے کام کرتا ہے اس حوالے سے ہماری پراپر ٹریننگ ہوئی ہے. 3 ہفتے کے لیے جو ہے وہ ہماری یہ ٹریننگ پیریڈ تھا, اور اس ٹریننگ پیریڈ کے دوران جو ہے وہ ہم نے مختلف رپورٹرز کے ساتھ, مختلف پروڈیوسرز کے ساتھ, پینل کے ساتھ کام کیا اور یہ جانا کہ یہاں کے چینل جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں. اور کچھ زیادہ فرق نہیں تھا کیونکہ یہاں پہ ہمیں جن چینلز میں بھیجا گیا تھا وہ چینلز لوکل ٹی وی چینلز تھے, اور پاکستان میں بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت میڈیا اس حد تک گرو کر چکا ہے کہ وہ اس لیول کو میچ کر پا رہا ہے फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पर और वहाँ के मीडिया में जो मैंने देखा अभी तक और अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है उसके मुताबिक मुझे लगता है कि यहाँ के लोग जो हैं दे आर लाइक वेरी प्रोफेशनल और इनके लिए डेडलाइंस को मीट करना बहुत जरूरी होता है. और दूसरी चीज ये यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है MMJs का, दैट लाइक मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट, जो कि वन मैन क्रू के तौर पर भी काम करते हैं, जबकि पाकिस्तान में हमने देखा है कि काम करने के लिए प्रॉपर टीम्स बनाई गई होती है. यहाँ पर लोग ही वो हायर किए जाते हैं जो कि 3 से 4 काम एक साथ एट अ मोमेंट कर सकें. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल. ये तो जर्नलिज्म के हवाले से था. अगर अमरीकी लोगों के हवाले से आपको बताऊं तो अमरीका के लोग मैंने बेहद आप कहें कि फ्रेंडली पाए हैं, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं, किसी पे रिलाय नहीं करते और बॉदरेशन बिल्कुल भी नहीं है. किसी की जिंदगी में क्या हो रहा है इस चीज से किसी तौर पर कतई ताल्लुक नहीं है. तो एक चीज जो मैंने यहाँ पर महसूस की है वो है एक फ्रीडम, एक आजादी, जो कि मुझे यहाँ के हवाले से बहुत अट्रैक्ट की है.
तो कोई आप तो क्योंकि लाहौर से हैं तो कोई लाहौर में और ओहायो में कोई मुमासलत नजर आई?
लाहौर और ओहायो में बिल्कुल भी मुमासलत नहीं है. अगर हम यहाँ की बिल्डिंग्स की बात करें, यहाँ पे लोगों के हवाले से बात करें, तो लाहौर एक बहुत ही पॉपुलेटेड यू नो सिटी है वहाँ पर. यहाँ जबकि अगर ओहायो की बात करूँ तो ओहायो जो है वो एक बहुत बड़ा शहर जरूर है, पर यहाँ पर लोग जो हैं इट्स वेरी लेस पॉपुलेटेड. उसके अलावा अगर आपको बताएं तो यहाँ पर ह्यूज बिल्डिंग्स हैं, बहुत सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है. पर लाहौर में आपको वो एक यू नो लाहौर का स्पेशल जायका आपको नजर आएगा कि यहाँ पर रश है, लोग रातों रात निकले हुए. यहाँ पे मैंने एक चीज जो बड़ी जो वेट थी जो मेरे मुझे शॉक जिस चीज से लगा वो यही था कि जब मैं यहाँ पर मार्केट्स में निकलती थी तो 5 से 6 बजे मॉल्स बंद हो जाते थे. तो हमारी नजर में, पाकिस्तानियों की नजर में अमेरिका का इंप्रेशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. हमें लगता था रात गए तक सब कुछ चलता रहता है, सब कुछ खुला रहता है. और यहाँ पर जब मैं आई हूँ तो मुझे ये चीज बड़ी डिफरेंट लगी कि यहाँ पर मॉल्स भी बंद हो जाते हैं, इवन रेस्टोरेंट जो है वो रात को 8-9 बजे बंद हो जाते हैं. तो वो अगर खसूसी तौर पर ओहायो की बात करूँ तो वो मुझे एक तो लेस पॉपुलेटेड लगा, दूसरा बिल्डिंग्स बहुत बड़ी हैं और सफाई सुथराई का बहुत ख्याल है. पर जैसे मैंने आपको कहा कि लेस पॉपुलेटेड है, वहां पर रश बिल्कुल भी नहीं है. लोग जो हैं वो सुबह जल्दी उठने वाले हैं तो रात को सारा काम जो है वो बंद हो जाता है, सारा बिजनेस बंद करके वो अपना के बाद लाइक इस तरह का मुझे लगा ओहायो.
तो वैसे आप क्योंकि वहाँ न्यूज एंकर थी तो वहाँ की न्यूज एंकर्स में और यहाँ की न्यूज एंकर्स को अगर मैं कहूँ कि कंपेयर करें तो किस तरह करेंगी आप?
अच्छा, वहाँ की न्यूज एंकर्स में एक ये चीज है कि हमारे लिए प्रॉपर टीम होती है. जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर बहुत ही चीजों के लिए मुझे ऐसा लगा है कि दे आर ऑल बाय देमसेल्व्स. तो ये एक चीज मुझे वहाँ पर महसूस हुई. अब जैसे यहाँ पर अगर न्यूज एंकरिंग के लिहाज से बात की जाए खसूसी तौर पर, तो न्यूज एंकर्स इवन तैयार भी खुद होती हैं, उनके कॉस्ट्यूम्स भी अपने होते हैं, इवन मेकअप है तो वो सब अपना खुद करती हैं. जबकि पाकिस्तान में हमारे लिए प्रॉपर मेकअप डिपार्टमेंट्स होते हैं. और फिर उसके अलावा यहाँ पर अगर न्यूज पढ़ने के आप खसूसी तौर पर स्टाइल की बात करें तो इट्स वेरी कैजुअल, बिल्कुल भी जिस तरह स्ट्रिक्ट होके हम लोग और उसको फॉलो करते हुए आप एक अपने डेकोरम को फॉलो करते हुए न्यूज पढ़ते हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा मैंने. मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे ये लोग कैजुअल हैं, ये ऐसे न्यूज पढ़ते हैं जैसे एक दूसरे से बात कर रहे हो और दूसरों को बता रहे हो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है. तो इट्स वेरी कैजुअल.
और इसके अलावा जो ड्रेसेस का चुनाव है उसमें कोई खास फर्क?
ड्रेसेस तो डेफिनेटली हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फॉर्मल होते हैं ड्रेसेस. न्यूज एंकर्स के इनके भी फॉर्मल थे पर ऑब्वियसली इनके ट्रेडिशन के मुताबिक थे वो.
तो और उसके अलावा इनका अमल दखल जो न्यूज एंकर्स का है उनके प्रोग्राम के या न्यूज के कंटेंट्स में आपने देखा कि होता है?
बिल्कुल होता है. ये चीज मैंने नोट की है कि ये लोग बकायदा तौर पर खुद से सर्च भी करते हैं और खुद सर्च करके बताते हैं कि जी आज ये इशू है, ये टॉपिक जो है वो हम चाहते हैं कि न्यूज के अंदर जरूर डाला जाए. इसके लिए खसूसी तौर पर सुबह सुबह बोर्ड मीटिंग होती थी और बोर्ड मीटिंग्स में तमाम लोग प्रोड्यूसर्स, एंकर्स और जो आपके लाइक हाई अथॉरिटी है, आपके डायरेक्टर्स, सब एक जगह पर बोर्ड मीटिंग में बैठते थे और वहां पर सब शेयर करते थे. इवन वेदर रिपोर्टर को भी मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है. वेदर जो है वो उनके लिए बकायदा तौर पर एक प्रॉपर एक ऐसा सेगमेंट होता है जो वेदर के लिए ही खसूसी तौर पर मख्सूस किया गया होता है. तो ये चीज एक मैंने नोट की है यहाँ पर. उसके अलावा एंकर्स खुद भी आके बताते थे कि जी आज ये वाला टॉपिक अहम है तो हम चाहेंगे कि आप इस हवाले से किसी रिपोर्टर को भेजें और ये वाला काम करें, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट मैंने देखी है. जबकि पाकिस्तान में हमें सिर्फ बाकायदा तौर पर प्रॉम्प्टर पे आती थी न्यूज, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, अपना सजेशन हमने देना है, तो खुद ही हमें जाकर जो है वो अपने डायरेक्टर न्यूज से बात करनी पड़ती थी. अदरवाइज यहाँ पर तो डेली मीटिंग होती है, वो भी दो, एक सुबह 9 बजे और एक 3 बजे.
तो ये यहाँ का डिसिप्लिन जो है, यहाँ आप समझते हैं यहाँ ज्यादा है कि वहाँ ज्यादा है?
डेफिनेटली यहाँ बहुत डिसिप्लिन है सब कुछ, और काफी ज्यादा पंक्चुअल है लोग, अपने काम को लेकर सीरियस हैं, दे आर वेरी प्रोफेशनल. ये मैंने यहाँ पर अभी नोट किया.
तो आप यहाँ से ऐसी क्या चीजें हैं जो अडॉप्ट करके जाएंगी और वहाँ अपनाएंगी?
सबसे पहली चीज ये कि पंक्चुअलिटी, यहाँ पर हर काम हर जो चीज है वो वक्त पर होती है, एंड दे आर वेरी पंक्चुअल. लेट होने का कॉन्सेप्ट जैसे कि पाकिस्तान में बहुत कॉमन है तो वो बिल्कुल भी नहीं है. दूसरी चीज यहाँ पर मैं मुझे जो अट्रैक्ट की थी वो MMJs का कॉन्सेप्ट था, यानी आप किसी पे भी रिलाई नहीं करते, आप वन मैन क्रू होते हो जब आप खुद सब कुछ करते हैं, एडिटिंग से लेके ड्राइविंग से लेके कैमरा से लेके इंटरव्यू से लेके सारी चीजें जब आप एक साथ कर रहे हो तो आपको किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ता, और वो जो प्रोडक्ट आप बनाते हो इट्स सोली योर्स. तो वो चीज मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस चीज को अडॉप्ट करें तो हमारे तो जो हमारी हायर अथॉरिटीज हैं उनको इस चीज का बहुत बेनिफिट मिलेगा. उनके ऑब्वियसली वो एक सैलरी पर जो है वो इतनी ज्यादा जो मल्टीटास्किंग एक पर्सन है उसको पॉइंट करेंगे तो डेफिनेटली उनके पैसे भी बचेंगे, रिसोर्सेज भी बचेंगे. तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप भी, आपके लिए भी ये बेनिफिट होता है और आपकी कंपनी के लिए भी बेनिफिट होता है इसका. ये एक चीज है जो मुझे लगता है कि वहाँ पर MMJs का कॉन्सेप्ट जरूर सामने लेके आना चाहिए.
अच्छा, और आप, ये पहला ऐसा गालिबन दौरा है जिसमें सारी की सारी खवातीन सहाफी आई हैं, तो ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था और आपका पहला एक्सपीरियंस भी था, तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस के एक पूरा ग्रुप जो कि खवातीन पर मुश्तमल है और वो इकट्ठे होकर 15-16 बल्कि 17 खवातीन सहाफी एक जहाज में बैठकर, हवाई जहाज में बैठकर एक नए मुल्क में आई और एक नए मुल्क में आकर मुख्तलिफ स्टेट्स में जाकर उन्होंने मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स को देखा, उनके साथ काम किया, तो कैसा रहा ये तजर्बा, शेयर कीजिए हमारे सुनने वालों से.
ये तजर्बा बहुत बेहतरीन था, मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन जो है वो ये एक आप कह सकती हैं कि टूर था, क्योंकि इसमें आप सोली जब आप निकलते हो अपने घर से बाहर, चाहे आगे आपको लड़कियां मिलती हैं या नहीं, बट हर चीज के लिए आपको खुद से ही मैनेज करना होता है, इवन ट्रांसपोर्टेशन से लेकर, ट्रैवलिंग से लेकर, खाने से लेकर, ग्रॉसरी से लेकर, हर चीज जब आप खुद कर रहे होते हो. तो मेरा ख्याल एक पहला मौका था मेरे लिए भी कि मैं उन तमाम चीजों को खुद से एक्सपीरियंस करूं, क्योंकि घर में या आप जब पाकिस्तान में होते हो, फैमिली सिस्टम में होते हो, तो ये चीजें आपको तब पता नहीं चल रही होती कि ग्रॉसरी कितने की आ रही है, खाना कहाँ से लेना है, कितने तक का होना चाहिए. वो जब सब चीजें आप खुद से कर रहे होते हो तो वो एक आपके लिए काफी ज्यादा लर्निंग प्रोसेस होता है. ये सारा ये टाइम मेरे लिए बहुत लर्निंग प्रोसेस था.
और वो सारी खवातीन जो कि पाकिस्तान में गालिबन आप उनसे ना मिली हो, एक नए मुल्क में उनके साथ मिलना,
बिल्कुल
साथ
बिल्कुल ऐसा है. अब बहुत सी ऐसी लड़कियां इनमें से थी जिनको मैं पहले से जानती थी, पर बहुत सी ऐसी थी जिनसे मेरा पहले कभी भी कांटेक्ट नहीं हुआ था, और जब मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ तो ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तान में भी जो है वो डिफरेंट चैनल्स में रबते जो है वो खुल चुके हैं. उसके अलावा यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस की थी वो ये था कि आई गॉट द चांस टू मीट टू हिलरी क्लिंटन. मैं यहाँ पर आई थी तो लकीली है क्या नाम है, हिलरी क्लिंटन से मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने अपने आप को एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जब इंट्रोड्यूस करवाया तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड, और फिर मैंने उन्हें अपने प्रोग्राम के हवाले से भी बताया तो शी जस्ट सेड के कीप अप द गुड वर्क. तो ये मेरे लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस वजह से भी थी क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं यहाँ पर, और मैं जब यहाँ पर आ रही थी तो ये एम मेरे जहन में था कि मैं एटलीस्ट किसी ना किसी जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है उससे मुलाकात करूँ और जानूं कि यहाँ पर इस वक्त लोग जो हैं वो किसको लेकर कितने एक्साइटेड हैं, क्या चाहते हैं वो, अमेरिका के फ्यूचर किस तरह से देखते हैं. तो ये क्योंकि ना सिर्फ अमेरिकन लोगों के लिए बल्कि पाकिस्तानी लोगों के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि अब आगे इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान के लिए पॉलिसी क्या होती है इसका कंसर्न पाकिस्तानी लोगों को भी है.
तो कुछ कैंपेन्स भी देखी आपने या उनकी जो गैदरिंग्स थी वो देखी आपने वोटर्स की?
बिल्कुल, जब हम वहां पे गए थे तो बाकायदा तौर पर हमने देखा कि बाहर रिपब्लिकन का प्रोटेस्ट हो रहा था और अंदर जो है वो हिलरी क्लिंटन का जो है वो खिताब जारी था, और वहां पर हमने देखा कि लोग जो है वो बड़ी तादाद में आए हुए थे, बहुत एक्साइटेड थे. और जो एक कॉन्सेप्ट था स्पेशली क्लीवलैंड ओहायो के लिए कि ये एक रिपब्लिकन स्टेट है, ऐसा बिल्कुल भी मुझे फील नहीं हुआ. मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ के जो मेयर्स हैं वो भी डेमोक्रेट हैं, और यहाँ के लोग जो है वो काफी हद तक चाहते हैं कि कोई खातून जो है वो उनकी नुमाइंदगी करे.
और एक ऐसे वक्त में आप सब खवातीन सहाफी पाकिस्तान से आई हैं, जबकि यहाँ अमरीका में एक खातून जो है वो सदारती इंतखाब लड़ रही हैं, तो ये भी एक दिलचस्प हुस्न इत्तफाक था कि बहुत सारी पाकिस्तानी खवातीन ने एक खातून सदारती उम्मीदवार को इंतखाब लड़ने के लिए तैयारी करते हुए देखा, कैंपेन करते हुए देखा.
बिल्कुल.
अच्छा, और यहाँ के अगर मैं सिस्टम्स की बात करूँ, यहाँ के दूसरे सिस्टम्स भी आपने देखे, वो कैसे लगे?
यहाँ के तमाम सिस्टम्स में मैंने देखा है कि लॉ इन्फोर्समेंट बहुत ज्यादा है. हर चीज के लिए कोई ना कोई रेगुलेशन बनाया गया है, और सिर्फ ये नहीं कि उस लॉ को बनाया गया है बल्कि उसको इन्फोर्स भी किया जाता है और लोग उस चीज को मान के चलते हैं. ये एक चीज मुझे पर्सनली यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास हर तरह का लॉ मौजूद है लेकिन वहां पर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन किसी भी तरह से नहीं है, और लोग भी जो है उसके ज्यादा बॉदर नहीं करते कि अगर लॉ है भी तो वो उस चीज की परवाह नहीं करते. पर यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग जो है वो काफी हद तक ये इस चीज की रिस्पेक्ट भी करते हैं कि हमारे लिए लॉज बनाए गए हैं और उनको फॉलो भी करते हैं.
तो कुछ कहना चाहेंगी इस वक्त उन पाकिस्तानी सहाफी खवातीन से जो हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं?
बिल्कुल. तमाम पाकिस्तानी खवातीन जो सहाफी हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि जो काम आप कर रही हैं छोटा समझ के ना करें जो भी काम आप कर रही हैं, क्योंकि समटाइम्स वो छोटा काम ही जो है वो आपको किसी ऐसी पोजिशन पर ले जाता है जहां पर आप नहीं सोच पाते. अपने काम को सिर्फ इस लगन से करती रहें कि आपने कुछ अपना पार्ट जो है वो इस चेंज में डालना है. ये सोचकर कभी भी काम नहीं करना चाहिए कि काम छोटा है या बड़ा. ये चीज मैंने यहाँ पर आकर बहुत महसूस की है कि कोई काम ये लोग छोटा समझकर नहीं करते. अपने अपने लेवल पे जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, और यही ऑनेस्टी जो है वो उनको किसी बड़ी पोजिशन पर लेके जाती है. और यही मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी सहाफियों को मैसेज भी है, और मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने आप को बिल्कुल भी अपने ख्वाबों को जो देखना है वो बंद ना कीजिए. ख्वाब जो है वो देखते रहें, क्योंकि छोटे छोटे जब आप ख्वाब देखते हैं तभी आप उनकी तकमील के लिए कोशिश भी करते हैं, और इस तरह के रास्ते जो है वो आपके लिए खुलते चले जाते हैं. और मेरा भी ये ख्वाब था कि मैं कभी अमेरिका आऊं और यहाँ के किसी चैनल में काम करूं. एक आम घर की लड़की होते हुए अगर मैंने ये ख्वाब देखा और ये पूरा हुआ तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने ख्वाबों पर यकीन जरूर रखना चाहिए.
ख्वाब देखते रहना चाहिए और उन ख्वाबों के हुसूल के लिए कोशिश भी करते रहना चाहिए.
बिल्कुल, कोई शुबा नहीं.
बेहद शुक्रिया अनम काजमी, आपने हमारे प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी के सुनने वालों के लिए अपने बहुत ही कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला. बेहद शुक्रिया. हरदम रमा है जिंदगी. वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुम्मे को नशर होने वाला प्रोग्राम. इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ते हुए कामयाब पाकिस्तानी अमरीकियों से, और उन पाकिस्तानियों से जो अमरीका और पाकिस्तान के ताउन से चलने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तहत यहाँ अमरीका का दौरा करते हैं.
मैं जो वहाँ पर अपने यानी कि पूरे अपने जो रवायती हमारा ड्रेस है उसी में मैं रही हूँ पूरा, इसलिए मैं तो चलता फिरता समझ लें पाकिस्तानी कल्चर था.
तो जब मैं स्टूडेंट था लाइब्रेरी में काम करता था, मैंने कन्वीनियंस स्टोर में काम किया, मैंने एक कुक की हैसियत से काम किया, मैंने सफाइयां भी की, झाड़ू भी दी, और मुझे फख्र है कि मुझे ये सब काम बड़े अच्छे आते हैं और इससे मेरी बेगम भी बहुत खुश रहती है.
जद्दोजहद इसलिए की कि आई वॉन्टेड टू बी समवेयर. मैं अगर पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे ये ना लगे कि मैंने पीछे कुछ किया ही नहीं और यहाँ तक मतलब कैसे पहुंचे. राइट, तो पीछे मुड़ के देख के अच्छा लगता है कि मेरा जो हार्ड वर्क था, जो मेहनत थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह रंग ला.
हरदम रमा है जिंदगी. ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर होता है पाकिस्तान में रेडियो पर मीडियम वेव 972 पर, और इंटरनेट पर वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट urduvoa.com पर. इसके साथ साथ हरदम रवा है जिंदगी को इसके फेसबुक पेजेस पर भी लाइव सुना जा सकता है, जिसका लिंक है facebook.com/hardamrawahaizindagi, और इसका दूसरा लिंक है facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu. और इन्हीं फेसबुक पेजेस पर آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ہمارے مہمانوں کا تصویری تعارف بھی. سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے. پیشکش یاسمین جمیل. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہماری آج کی مہمان ہیں انٹرنیشنل سینٹر فار جرنلسٹ یا ICFJ اور امریکی محکمہ خارجہ کے تعاون سے یہاں امریکہ میں ایک تربیتی پروگرام میں شرکت کے بعد پاکستان واپس جانے والی الیکٹرانک میڈیا سے متعلق پاکستانی صحافی خواتین کے ایک گروپ کی کچھ نمائندہ ارکان. اور صرف خواتین صحافیوں پر مشتمل 5 ہفتوں کے لیے تربیت پانے والے اس ایکسچینج گروپ کی نمائندگی کے لیے ہماری مہمان ہیں یوما اریزونا میں اپنا تربیتی کورس مکمل کر کے پاکستان واپس جانے والی ایکسپریس نیوز لاہور کی ایسوسیٹ پروڈیوسر اسما تبسم. ہماری مہمان ہیں اریزونا کے ایک میڈیا چینل پر ایک تربیتی کورس مکمل کرنے کے بعد پاکستان واپس جانے والی پی ٹی وی اسلام آباد کی رویش رفیق. ہم نے دعوت دی ہے ڈینور کولوراڈو کے ایک میڈیا چینل سے اپنا تربیتی کورس مکمل کر کے پاکستان واپس جانے والی سما ٹی وی کراچی کی کاپی ایڈیٹر اور بلاگر امبرین سکندر کو. اور ہماری مہمان ہیں کلیولینڈ اوہایو کے ایک میڈیا چینل سے وابستہ رہ کر پاکستان واپس جانے والی لاہور پاکستان کے دن میڈیا گروپ کی پروگرام اینڈ نیوز اینکر انم کاظمی. ہماری ویب سائٹ پر اس پروگرام کو سننے کے لیے ہمارا لنک ہے urduvoa.com. اور ہمارے مہمانوں کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/voaurdu اور ہمارے دوسرے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahaizindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu. اور ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ ہم نے پاکستان کے انصافی خواتین سے گفتگو گزشتہ دنوں ان کی پاکستان روانگی کے موقع پر ریکارڈ کی تھی. اور اب شامل کرتے ہیں گفتگو میں ایکسپریس نیوز لاہور کی ایسوسیٹ پروڈیوسر اسما تبسم کو جو یوما اریزونا میں اپنا تربیتی کورس مکمل کر کے پاکستان واپس جا رہی ہیں. السلام علیکم اسما تبسم صاحبہ.
وعلیکم السلام.
بے حد شکریہ ہمارے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی کے سننے والوں کے لیے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالنے کا. ہمارا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کچھ بتائیے اس پروگرام کے بارے میں جس کے حوالے سے آپ نے یہاں امریکہ کا 5 ہفتوں کا ایک تربیتی کورس مکمل کیا اور اب آپ پاکستان واپس جانے کو بالکل تیار ہیں.
یہ پروگرام جو ہے یہ ہے یو پاک یو ایس پروفیشنل پارٹنرشپ پروگرام فار جرنلسٹ. یہ ICFJ اور USEFP اور یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کوپریشن سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور اس کو فنڈ کرتا ہے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جس کے اندر ہم لوگ آئے ہیں. ہمیں اوور آل پاکستان میں سے یو ایس ای ایف پی والوں نے ہمیں ایک فارم دیا تھا انٹرنیٹ پہ اور پھر ہم نے وہ فل کیا اور اس کو فل کرنے کے بعد پھر ہمارا شارٹ لسٹ ہوئے. شارٹ لسٹ ہوئی تھی لڑکیاں کوئی آئی گیس 100 کے قریب شاید تھیں اور اس میں سے پھر بعد میں انہوں نے انٹرویو کی کال کی اور انٹرویو میں صرف 17 جو تھیں لڑکیاں وہ سلیکٹ ہوئی تھیں آل اوور دا پاکستان. اور اس میں ہمارے لوکل چینلز کی بھی کافی لڑکیاں ہیں کراچی سے لاہور سے اسلام آباد سے سکھر سے بھی کافی لڑکیاں آئی ہیں سندھ ریجن سے بھی کافی لڑکیاں. اور دوسرا یہ کہ یہاں پر آنے کے بعد ایکسپیرینس بہت اچھا تھا جو مائنڈ میں ہمارے رہا کہ یو ایس اے کا کیا امیج ہے جو مطلب ایز اے پاکستانی ایز اے میڈیا جرنلسٹ جو جو کچھ ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی اسٹوریز آ رہی ہیں ہمیں موسٹلی پولیٹیکل چیزوں کا پتا ہوتا ہے کہ پولیٹیکلی کیا چیز چل رہی ہے. ہمیں لوگوں کے بارے میں یہ پتا ہوتا ہے کہ یو ایس سٹیزنس آر لائک ایروگنٹ اور روڈ اس طرح کے ہوتے ہیں. میں جب آ رہی تھی تو مجھے یہ تھا کہ پتا نہیں یو ایس سے جا کر کیا ہوگا لوگ کیسے ٹریٹ کریں گے. اوبویسلی نیا ملک ہے نیا نئے لوگ ہیں نیا شہر ہوگا तो लोगों के साथ एडजस्ट करने में काफी टाइम लगता है. लेकिन जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो बेसिकली बहुत कुछ चेंज हुआ. मैं युमा में गई हूँ. युमा में मोस्टली, युमा इज नियर मैक्सिकन बॉर्डर और युमा में ज्यादातर मैक्सिकन जो है वो पॉपुलेशन है. लेकिन जो मुझे अमेरिकन भी मिले, जितने भी युमा में भी लोग थे, मैक्सिकन थे या जो मतलब यूएस सिटीजन थे, दे वर वेरी गुड और उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. उन्होंने हर चीज में हेल्प की और इट टोटली चेंजेस द इमेज ऑफ यूएसए एंड द यूएसए सिटीजन.
तो प्रोफेशनली आपने यहाँ पर क्या कुछ सीखा?
प्रोफेशनली ऑब्वियसली हम लोगों को अपॉइंट किया गया था लोकल चैनल्स में. इतना ज्यादा मार्जिन नहीं था ऑब्वियसली सीखने का, लेकिन ये था कि कुछ चीजें भी, जैसे यहाँ के जर्नलिस्ट जो हैं, चाहे वो लोकल चैनल्स में हैं या फिर इंटरनेशनल चैनल्स में वर्किंग कर रहे हैं, ये लोग मल्टी टैलेंटेड हैं. दे आर लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड. एक बंदे का काम जो है, मतलब एक बंदा जो है वो 3 से 4 जॉब्स करता है. लाइक वो बंदा रिपोर्टर भी है, वो एडिटर भी है, वो प्रोग्राम प्रोड्यूसर भी है, न्यूज़ प्रोड्यूसर भी है और वो उसको ऑन एयर भी कर रहा है. तो मल्टीटास्किंग लोग हैं यहाँ पर. एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, हमारे पास हर जॉब के लिए एक बंदा होता है. हमारे पास ड्राइवर्स अलग होते हैं, हमारे पास एडिटिंग स्टाफ अलग होता है, हमारे पास एनसीआर में लोग अलग होते हैं और रिपोर्टर्स हमारे अलग होते हैं, प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स हमारे अलग होते हैं, कॉपी राइटर्स अलग होते हैं. तो वो डिपार्टमेंट्स हमारे बहुत ज्यादा हैं, जबकि यहाँ पर जो मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, वो थोड़े होते हैं और एक बंदा जो होता है वो मल्टी टैलेंटेड बंदा है.
तो आप समझती हैं कि ये काम पाकिस्तान में हो सकता है? वहाँ पर भी आप लोग जब जाएंगी तो कोशिश करेंगे कि इसी तरह कई काम एक वक्त में करें?
बिल्कुल, ऑब्वियसली हम जाएंगे और जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपने डायरेक्टर न्यूज के साथ. तो मतलब मेरे लिए ये चीज बहुत अच्छी है क्योंकि हमें सारी चीजें नहीं आती हैं. आई एम अ प्रोग्राम प्रोड्यूसर, आई एम अ प्रोड्यूसर एट इंग्लिश टिकर्स दिस, ठीक है, और मुझे बाकी की चीजें नहीं आती. मुझे ये नहीं पता कि एमसीआर में या पीसीआर में पैनल कैसे प्रोड्यूस करेंगे. जब मैं यहाँ पर आई थी मुझे कैमरा हैंडल करना नहीं आता था. ऑल्दो आई हैव डन माय एमफिल और उसमें जो थे वो डॉक्यूमेंट्रीज जो थी वो हम लोगों ने बनाई थी. ठीक है, मैंने उसमें कैमरा ऑपरेट किया था बट नॉट इन द प्रोफेशनल फील्ड. तो ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने कैमरा ऑपरेट किया था. अच्छा, मैं अच्छा हम मतलब बैक टू द पॉइंट, अमेरिका में हम लोगों ने, मैंने जो आके सीखा वो मैंने कैमरा वर्क भी किया, मैंने फील्ड रिपोर्टिंग भी की. मुझे नहीं पता था पाकिस्तान में रिपोर्टिंग में क्या क्या कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं इन हाउस ही होती हूँ, मैं कभी बाहर नहीं गई हूँ. तो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस कि आपको हर चीज आनी चाहिए. एज अ मीडिया पर्सन आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि आपके मीडिया में क्या काम हो रहा है और हर जगह पर किस तरह से काम किया जाता है, ताकि कल को अगर कभी जरूरत पड़ती है या आपको कहीं स्विच भी करना होता है या आपको मतलब कभी होता है कि रिप्लेस नहीं है कोई, तो एटलीस्ट कोई और बंदा तो आपको हैंडल कर सकता है या आप जाके वो चीज कवर कर सकते हो.
अच्छा, और इसके अलावा यहाँ के दूसरे जो ट्रैफिक सिस्टम है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ की जो खास तफरीही मकाम आते हैं, इन सबको भी आपको देखने का मौका मिला?
मैं एक बात बताऊँ, युमा में और ओवरऑल जितना भी मैं फिरी हूँ, आई वेंट टू द न्यूयॉर्क, आई वेंट टू सैन डिएगो, ग्रैंड कैनियन, फ्लैगस्टाफ, सिरोना, मैं बहुत फिरी हूँ, कैलिफोर्निया, एरिजोना में बहुत फिरी हूँ. जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बहुत बुरा है पाकिस्तान में. मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा है. यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर हमें बसेस जो हैं, युमा में कोई बस नहीं चलती थी, वहाँ पर हमें कैब लेनी पड़ती थी और कैब भी विदाउट मीटर थी, जिसमें हमें मतलब जो ड्राइवर का दिल करता था वो हमसे पैसे मांग लेता था कि चलिए $20 दे दें, $15 दे दें, मतलब आपकी अपनी मर्जी. तो ये चीज़ बहुत बुरी थी. हमें कम्यूट करना में बहुत इशू था युमा के अंदर, और वहाँ का वेदर इतना गर्म था कि हम वॉक नहीं कर सकते थे. वाशिंगटन में ये है कि वाशिंगटन में हम लोग वॉक बहुत कर सकते हैं. हम लोग मतलब यहाँ पर हमें बस में जाने की बहुत कम जरूरत पड़ती है. ऑल्दो यहाँ पर टैक्सी का अच्छा सिस्टम है, बट स्टिल यूएसए में ओवरऑल ट्रांसपोर्ट का बहुत बुरा सिस्टम है. जहाँ तक बात है पिकनिक स्पॉट्स की, हम लोग, मैं गई थी डिज्नीलैंड, ग्रैंड कैनियन, बहुत अच्छा सिस्टम था. मतलब पाकिस्तान में जैसे क्यूज का बहुत इश्यूज होता है कि लाइन में आप लोग खड़े नहीं हो, यहाँ पर एक लाइन का बहुत अच्छा सिस्टम है कि आप मतलब वहाँ पर खड़े होते हो, लोग सुनते भी नहीं अगर आप लाइन छोड़ कर चले जाएंगे. पाकिस्तान में तो लाइन का सिस्टम ही नहीं होता, काफी बारी आने में बहुत टाइम लगता था. मतलब ये जो या ये होता है कि जो आगे चला गया तो बस उसकी बारी आ गई. मतलब ये था कि डिसिप्लिन लोग थे, आपकी टर्न बाय टर्न आपको सारा कुछ देखने में, और हर चीज की एक चीज है. मुझे यहाँ पर आके एक चीज बहुत अच्छी लगी कि मैं व्हाइट हाउस गई और वहाँ की सिक्योरिटी, आई मीन मुझे ये शौक लगा कि वहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं लोग, वहाँ पर पॉलिटिशियंस होते हैं जिन जिन जगहों पर. हम लोग कैपिटल हिल पे गए, वहाँ पर सेनेट की मीटिंग भी हो रही थी, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी वालों ने हमें रोका नहीं. हम कहीं पे भी आ जा सकते थे, कोई मसला ही नहीं था. व्हाइट हाउस के सामने हम लोग खड़े रहे काफी देर, पिक्चर्स वगैरह बनाई, हमें किसी ने नहीं रोका. लेकिन इन पाकिस्तान में यू गो इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट हाउस, वो आपको काफी देर पहले रेड जोन में एंटर होने से पहले आपको रोक लेते हैं, आपको इतना फ्रीली हम आगे नहीं जा सकते. यूमा में मैं इनके मेयर से मिली थी, यूमा मेयर से, और नॉट हैविंग एनी सिंगल गार्ड सिक्योरिटी गार्ड. हमारे पाकिस्तान में गार्ड्स बहुत होते, तो छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ पर बहुत अच्छी थी, और कुछ चीज़ें थी जो बहुत बुरी थी. हलाल फूड का बहुत मसला हुआ था, ऑब्वियसली हुआ मसल, मुझे बहुत इशू था हलाल फूड, मुझे हलाल फूड नहीं मिला यूमा में. मुझे यूमा में बहुत बहुत मसले हुए, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ये बहुत इशू था. लेकिन वो तो एक नेचुरल क्लाइमेट आ जाता है उसमें, तो बंदा कुछ नहीं कह सकता. और फूड का भी ऑब्वियसली यहाँ पर उतनी ज्यादा, यूमा में मुस्लिम कम्युनिटी बिल्कुल नहीं है. यूमा में हम लोग मतलब मैं और रविश थे, दो लड़कियां जो यूमा अपॉइंट हुई थी, और हम दो वो पहले लोग थे जो एशिया से, फर्स्ट एशियन थे जो यूमा में गए थे. यूमा में कहीं से कोई एशियन नहीं गया कभी.
अच्छा, तो
और पाकिस्तानी भी हम ही थे.
अच्छा अच्छा, तो फिर उनको पहली बार आप पाकिस्तानी देखने को मिले यूमा में.
हाँ जी, बहुत. और वो लोग बहुत अच्छे थे, मतलब उन्हें ये पता था कि मैं हलाल में फूड खा रही होती हूँ और मुझे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मैंने नहीं खाने हैं. तो वो मेरे होटल के जो स्टाफ था वो मेरे लिए बेचारे मतलब मेरे लिए निकाल के वो चीजें रखते थे कि अच्छा आप ये खा सकती हैं, आप ये खा सकते हैं, हम आपको ये दे देते हैं. तो वो उन्होंने उस चीज़ में मेरी बहुत हेल्प की. वहाँ यूमा में लोग बहुत अच्छे थे, जहाँ पर हमें कोई मसला हुआ, हमें जगह समझ में नहीं आ रही है, हमने कहीं टूर करना है, हमने कहीं जाना है, तो वो लोग बहुत हेल्पफुल थे कि आप यहाँ से ये करने, ये ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं. बहुत बहुत अच्छे रहे हैं वो लोग हमारे साथ. होटल का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो लोग मतलब साथ थे.
अच्छा, तो कुछ कहना चाहेंगी उन उन जर्नलिस्ट खवातीन से जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, अपने उन तजुर्बात की बेस पर जो आपने यहाँ हासिल किए इस प्रोग्राम के थ्रू?
मैं जरूर सबसे कहूंगी कि ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए. इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, आपको इस अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए. आपको पता चलता है, आपका एक्सपीरियर बढ़ता है कि आप हमारे जहनों में जो इमेज बना हुआ है अमेरिका का और इनके लोगों का, वो बहुत गलत है और वो बहुत टोटली चेंज है. मतलब यहाँ के लोग वैसे नहीं है जिस तरह का हमारा इमेज है. तो हमें यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ का वर्किंग एक्सपीरियर मिलना चाहिए. यहाँ के स्टूडियोज डिफरेंट हैं, यहाँ का वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है, लोग बहुत पंक्चुअल हैं, लोगों के लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट है. तो मैं ये कहूंगी कि ये अपॉर्चुनिटी किसी को मिस नहीं करनी चाहिए, मुझे जाना है स्पेशली.
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा उनको इसलिए?
अप्लाई करें. USCSB इज गिविंग यू द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. फुल ब्राइट स्कॉलरशिप होते हैं, हैम्फ्री का स्कॉलरशिप होता है, बहुत सारे स्कॉलरशिप चल रहे होते हैं. तो वो उनके थ्रू आए और देखें, एक फोयर लें यहाँ पर आके. यहाँ पर आके सिर्फ आप वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं होता, आपकी अपनी जो पर्सनल हैबिट्स हैं, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है. मतलब मुझे ये लगता है कि आई चेंज अ लॉट, मेरा एटीट्यूड में बहुत फर्क आया. मैं इतनी हम्बल कभी भी नहीं रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब अमेरिकन से बात कर रहे होते हैं तो इतने बंदा हम्बल होकर बात करते हैं कि मुझे खुद भी समटाइम्स ये फील हो रहा था कि अच्छा हम लोग इतना रोडली बात कर रहे होते हैं पाकिस्तान में और इतनी हार्शली बात कर रहे होते हैं समटाइम्स.
तो इस वक्त आप बस में हैं?
हाँ जी, मैं बस में हूँ. मुझे यहाँ पर बस का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा होता. आज मैं पहली दूसरी दफा बल्कि बस में बैठी हूँ यहाँ पर.
अच्छा, तो गलत स्टेशन पर तो नहीं उतर रही?
नहीं, मैंने जाना है वॉशिंगटन टाउन में. अच्छा. तो मैं बस उधर ही हूँ, उसी रस्ते पर ही हूँ. मैं स्टॉप का वेट कर रही हूँ, फिर स्टॉप पे ये रुकेगा तो हम उतरेंगे. मैंने जारा के ऊपर जाना था और अब पता नहीं जारा किधर रह गया है, समझ में नहीं आ रहा है.
अच्छा, मैंने आपको डिस्टर्ब किया?
नहीं, कोई मसला नहीं है. बता, लास्ट डे हम लोगों ने जाना है, तो बस मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग जो रह गई थी वो करने वाली है.
बेशुक्रिया इसमें तबस्सुम, आपने बस में बैठ कर हमें इंटरव्यू दिया और ये अच्छा मेरे लिए, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने बस में बैठने के बावजूद हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला.
हरदम रमा है जिंदगी. वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुम्मे को नशर होने वाला प्रोग्राम. इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ते हुए कामयाब पाकिस्तानी अमरीकियों से और उन पाकिस्तानियों से
जो अमेरिका और पाकिस्तान के तआवुन से चलने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तहत यहाँ अमेरिका का दौरा करते हैं।
मैं जो वहाँ पर अपने यानी कि पूरे अपने जो रवायती हमारा ड्रेस है उसी में मैं रही हूँ पूरा, इसलिए मैं तो चलता फिरता समझ लें पाकिस्तानी कल्चर था।
तो जब मैं स्टूडेंट था लाइब्रेरी में काम करता था, मैंने कन्वीनियंस स्टोर में काम किया, मैंने एक कुक की हैसियत से काम किया, मैंने सफाइयां भी की, झाड़ू भी दी, और मुझे फख्र है कि मुझे ये सब काम बड़े अच्छे आते हैं और इससे मेरी बेगम भी बहुत खुश रहती है।
जद्दोजहद इसलिए की कि आई वांटेड टू बी समवेयर, मैं अगर पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे ये ना लगे कि मैंने पीछे कुछ किया ही नहीं और यहाँ तक मतलब कैसे पहुंचे, राइट। तो पीछे मुड़ के देख के अच्छा लगता है कि मेरा जो हार्ड वर्क था, जो मेहनत थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह रंग ला।
हरदम रमा है जिंदगी, ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर होता है पाकिस्तान में रेडियो पर मीडियम वेव 972 पर और इंटरनेट पर वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट urduvoa.com पर। इसके साथ साथ हरदम रवा है जिंदगी को इसके फेसबुक पेजेस पर भी लाइव सुना जा सकता है, जिसका लिंक है facebook.com/hardamrawahaizindagi और इसका दूसरा लिंक है facebook.com/yasminjameelvoaurdu। और इन्हीं फेसबुक पेजेस पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं हमारे मेहमानों का तस्वीरी तारुफ भी। सुनना ना भूलिए पाकिस्तान में हर जुम्मे को रात 10 से 11 बजे पेशकश यास्मीन जमील। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हमारी आज की मेहमान हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट या ICFJ और अमरीकी महकमे खारिजा के तआवुन से यहाँ अमरीका में एक तरबियती प्रोग्राम में शिरकत के बाद पाकिस्तान वापस जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुतालिक पाकिस्तानी सहाफी खवातीन के एक ग्रुप की कुछ नुमाइंदा अरकान। और सिर्फ खवातीन सहाफियों पर मुश्तमल 5 हफ्तों के लिए तरबियत पाने वाले इस एक्सचेंज ग्रुप की नुमाइंदगी के लिए हमारी मेहमान हैं योमा एरिजोना में अपना तरबियती कोर्स मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस जाने वाली एक्सप्रेस न्यूज लाहौर की एसोसिएट प्रोड्यूसर असमा तबस्सुम। हमारी मेहमान हैं एरिजोना के एक मीडिया चैनल पर एक तरबियती कोर्स मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान वापस जाने वाली PTV इस्लामाबाद की रवीश रफीक। हमने दावत दी है डेनवर कोलोराडो के एक मीडिया चैनल से अपना तरबियती कोर्स मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस जाने वाली समा TV कराची की कॉपी एडिटर और ब्लॉगर अम्बरीन सिकंदर को। और हमारी मेहमान है क्लीवलैंड ओहायो के एक मीडिया चैनल से वाबस्ता रहकर पाकिस्तान वापस जाने वाली लाहौर पाकिस्तान के दिन मीडिया ग्रुप की प्रोग्राम एंड न्यूज एंकर अनम काजमी। हमारी वेबसाइट पर इस प्रोग्राम को सुनने के लिए हमारा लिंक है urduvoa.com और हमारे मेहमानों के तस्वीरी तारुफ और इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेजेस पर सुनने के लिए हमारे लिंक्स हैं facebook.com/voaurdu और हमारे दूसरे लिंक्स हैं facebook.com/hardamrawahaizindagi और facebook.com/yasminjameelvoaurdu। और हम अपने सुनने वालों को बता दें कि हमने पाकिस्तान के इंसाफी खवातीन से गुफ्तगु गुज़िश्ता दिनों उनकी पाकिस्तान रवानगी के मौके पर रिकॉर्ड की थी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करेंगे समा TV कराची की कॉपी एडिटर और ब्लॉगर अम्बरीन सिकंदर को, जो डेनवर कोलोराडो के एक मीडिया चैनल से अपना तरबियती कोर्स मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्बरीन सिकंदर साहिबा।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मुस्यास्मीना?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। कुछ बताइए हमारे सुनने वालों को कि आपका क्या तजर्बा रहा यहाँ पर 5 हफ्तों का, और ऐसा क्या कुछ आपने यहाँ पर सीखा है जो आप समझती हैं कि उससे आपके प्रोग्रामों में निखार आएगा, आपके सुनने वालों को फायदा होगा और आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी इसका बहुत मुस्बत असर होगा।
अल्हम्दुलिल्लाह दौरा बहुत अच्छा रहा और मैं स्टेट डिपार्टमेंट का IGCF का कह रहे बहुत बहुत उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी यहाँ आके. मैंने सबसे मेरे लिए जो अमेजिंग बात थी वो ये था कि मेरी जो डायरेक्टर न्यूज थी वो फीमेल थी. इवन दो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर 48 न्यूज चैनल्स है लेकिन नन ऑफ द डायरेक्टर न्यूज इज फीमेल. तो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी कि इतनी अहम पोजीशन के ऊपर उन्होंने एक फीमेल को रखा हुआ था. इसके अलावा मैंने ज्यादातर टाइम अपना TX में गुजारा, रन डाउन के साथ लॉगिंग्स वगैरह मैंने गुजारा, एडिटिंग सीखी. एडिटिंग में मैंने ये देखा कि ये लोग किस तरह से यूज करते हैं, अपने ऑनलाइन फैक्ट्स के ऊपर किस तरह से रिसर्च करते हैं. फिर रिपोर्टर और कैमरामैन के साथ जो हम लोग जाते थे, तो यहाँ का जो कैमरामैन है लाइक वन मैन आर्मी, कि उसको ड्राइव भी करना होता है, शूटिंग भी करनी होती है, एडिटिंग भी करनी होती है, और उसको कहते हैं क्यू भी देने होते हैं रिपोर्टर को कि आप ऐसा करें ऐसा नहीं करें. सो इट्स मोर लाइक अ डायरेक्टिंग थिंग भी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा. मैंने काफी कुछ सीखा, टेक्निकल साइड पर भी बहुत कुछ सीखा.
खुद भी आपने कोई प्रोग्राम बनाया कि जस्ट आपने ऑब्जर्व किया?
मैंने आर्टिकल्स लिखे, 3 आर्टिकल्स मैंने लिखे, एक तो बीइंग अ पाकिस्तानी इन अमेरिका और एक US इलेक्शन इन ट्रम्प. और मैंने एक लिखा था ये जो बेघर अपराध होते हैं, होमलेस होते हैं, तो ये डेनवर के अंदर काफी एक इशू चल रहा था और उन्होंने एक लॉसूट क्या कहते हैं फाइल किया था, उसके ऊपर मैंने 3 आर्टिकल्स लिखे.
अच्छा, तो वो छपे फिर मकामी अखबारों में?
पता नहीं वो कहाँ छपेंगे. मैंने तो ICFJ वालों को वो सेंड किए, लगता है आगे वो वहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं. मैं कोशिश करूंगी कि अपनी समय की वेबसाइट पर पब्लिश हो कहीं और.
कोई खास चीज जो आप समझती हैं कि आपको बहुत फायदा देगी जो आप यहाँ से सीख कर पाकिस्तान वापस जाएंगी? तो
जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हुआ है वो बहुत ज्यादा है, वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. दूसरी बात ये जो मैंने यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म सीखा है, अपने काम से काम रखना बिल्कुल, और ये कितनी डेडिकेशन के साथ ये लोग पूरे हफ्ते जिस तरह से काम करते हैं, ये बहुत चीज इम्पोर्टेंट मैंने सीखी है यहाँ पर.
अच्छा, तो आपका ख्याल है कि पाकिस्तान में इतनी डेडिकेशन से खवातीन काम नहीं करती?
डेडिकेशन से होती है लेकिन वो जो एक एटीट्यूड होता है ना आपको मेंटली तौर पे जो टॉर्चर करते हैं, वो मैंने बिल्कुल यहाँ पे नहीं देखा. इतना सुकून है, दिन गुजरे ना मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं ऑफिस जाती थी.
खास तौर पर आपने खवातीन को एक ही जगह पर काम करते हुए देखा मर्दों के साथ, तो
हाँ, और मैंने बिल्कुल ये देखा कि लड़की है तो नहीं भाई इसको तो कोई हाई पोजीशन देनी ही नहीं है, इसको क्यों हमको ये क्या कहते हैं पोजीशन दे दे. लड़की लड़का जो भी हो सबको उनके स्किल्स और एबिलिटी के ऊपर ट्रीट किया जाता है, ना ये डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो होती है.
मैंने सबसे अच्छी बात यही लगी कि यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी,
बिल्कुल भी नहीं देखी मैंने.
अच्छा, कोई दिलचस्प वाकया जो आप शेयर करना चाहें हमारे सुनने वालों से?
पता नहीं दिलचस्प है या नहीं है, लेकिन मैंने दिलचस्प म्यूजियम में भी और क्या कहते हैं हिस्ट्री वाली बिल्डिंग मैंने विजिट किया. जब भी मैंने उनको जाके बताया कि मैं पाकिस्तान से, तो उन्होंने मुझे टिकट ही फ्री कर दिया.
दिलचस्प तो है ये.
बस ये मुझे बहुत अच्छा है और डेनवर के बहुत प्यार है, बहुत लविंग, बहुत प्यार है.
अच्छा, तो क्या
बहुत, और स्पेशली जो मेरी डायरेक्टर न्यूज थी, जब उनको पता चला कि मैं स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी फैन हूँ एंड आई एम अ फॉर्मर बेसबॉल कैप्टन, तो उन्होंने मुझे बेसबॉल के गेम्स के उन्होंने मुझे टिकट्स भी दिए, बास्केटबॉल के, फुटबॉल के उन्होंने मुझे टिकट्स भी दिए.
तो कोई मसाइल तो नहीं पेश आया इस दौरान आपने? वैसे
बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इवन अगर मैं कहीं गुम भी हो जाती थी तो मैं वहाँ किसी से रुक के पूछ रही टिकट दी थी, क्योंकि मुझे मैप इतने यूज करने नहीं आते थे, तो सब लोगों ने बहुत अच्छा मुझे डायरेक्ट किया. जो एक परसेप्शन है ना कि अमेरिका ऐसा होता है, अमेरिकन रूड होते हैं और आपके फेथ को लेकर, आपके कहते हैं नेशनलिटी को लेकर बहुत ज्यादा आपको इस तरह से चीजें फेस करनी पड़ेंगी, मुझे कोई भी नहीं फेस, मैंने कोई मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं इस तरह का फेस किया.
कोई कल्चरल शॉक भी नहीं लगा आपको?
बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट मुझे तो अब लग रहा है कि पाकिस्तान जाके मुझे एक कल्चरल शॉक लगेगा, क्योंकि मैं इतनी एकदम मैंने अडॉप्ट कर लिया सारी चीजें यहाँ पे, क्या मुझे वहाँ पाकिस्तान जाके लगेगा.
अच्छा, तो इसका मतलब ये कि आपके नजदीक ये दौरा बहुत ज्यादा मुफीद रहा?
बहुत एक्सीलेंट, एंड आई विश कि मैं दोबारा यहाँ पे हूँ, मेरे वापस जाने का दिल भी नहीं चाह रहा.
अच्छा अच्छा, तो ये लाइफ चेंजिंग दौरा कहेंगे आप इसको?
बहुत ज्यादा, और वॉइस ऑफ अमेरिका इज लाइक वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट क्या कहते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी वो मेरा होम पेज है.
बहुत शुक्रिया अमरीन सिकंदर, आपने हमारे प्रोग्राम हरदम रवाया.
आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी फीडबैक दी, और आपकी टीम को भी बहुत बहुत थैंक यू.
बहुत शुक्रिया. वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हमारी आज की मेहमान है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट या ICFJ और अमरीकी महकमे खारिजा के तआवुन से यहाँ अमरीका में एक तरबियती प्रोग्राम में शिरकत के बाद पाकिस्तान वापस जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुतालिक पाकिस्तानी सहाफी खवातीन के एक ग्रुप की कुछ नुमाइंदा अरकान. और सिर्फ खवातीन सहाफियों पर मुश्तमल 5 हफ्तों के लिए तरबियत पाने वाले इस एक्सचेंज ग्रुप की नुमाइंदगी के लिए हमारी मेहमान है یوما اریزونا میں اپنا تربیتی کورس مکمل کر کے پاکستان واپس جانے والی ایکسپریس نیوز لاہور کی ایسوسیٹ پروڈیوسر اسما تبسم. ہماری مہمان ہیں اریزونا کے ایک میڈیا چینل پر ایک تربیتی کورس مکمل کرنے کے بعد پاکستان واپس جانے والی پی ٹی وی اسلام آباد کی رویش رفیق. ہم نے دعوت دی ہے ڈینور کولوراڈو کے ایک میڈیا چینل سے اپنا تربیتی کورس مکمل کر کے پاکستان واپس جانے والی سما ٹی وی کراچی کی کاپی ایڈیٹر اور بلاگر امبرین سکندر کو. اور ہماری مہمان ہیں کلیولینڈ اوہایو کے ایک میڈیا چینل سے وابستہ رہ کر پاکستان واپس جانے والی لاہور پاکستان کے دن میڈیا گروپ کی پروگرام اینڈ نیوز اینکر انم کاظمی. ہماری ویب سائٹ پر اس پروگرام کو سننے کے لیے ہمارا لنک ہے urduvoa.com. اور ہمارے مہمانوں کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/voaurdu اور ہمارے دوسرے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahizindagi اور facebook.com/yasminjameelvoaurdu. اور ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ ہم نے پاکستان کے انصافی خواتین سے گفتگو گزشتہ دنوں ان کی پاکستان روانگی کے موقع پر ریکارڈ کی تھی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رویش رفیق جن کا تعلق ہے اسلام آباد پی ٹی وی ورلڈ سے اور وہاں پر یہ پینل پروڈیوسر تھیں اور یہاں پر اریزونا میں رہی ہیں. 3 ہفتے زیادہ گزارے انہوں نے اریزونا میں اور واشنگٹن سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں. السلام علیکم رویش رفیق صاحبہ.
وعلیکم السلام.
آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی کے سننے والوں کے لیے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا. آپ کے کچھ ساتھیوں نے اپنے تاثرات دیے اور بتایا کہ ان کا یہ دورہ بہت کامیاب رہا. کچھ بتائیے کہ آپ کا یہ جو دورہ تھا امریکہ کا ایکسچینج پروگرام کے تحت, جرنلسٹ ایکسچینج پروگرام کے تحت, اس میں آپ نے کیا کچھ سیکھا اور کیا کچھ سکھایا؟
میرا یہ جو دورہ تھا وہ 5 ہفتوں میں مشتمل تھا جس کے ڈفرینٹ پارٹ تھے, جس میں کچھ عرصہ ہم نے واشنگٹن ڈی سی میں گزارا اور کچھ عرصہ ہم نے اپنے اٹیچمنٹ سے گزارا. اوور آل اگر میں سٹورے کی بات کروں تو ہمارے جو انٹریکشنز جو ہمارے ہوسٹ تھے آئی سی ایس سے, جو انہوں نے ریکوائسٹ ہے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ڈفرینٹ سینئر جرنلسٹ کے ساتھ, وہ انتہائی انفارمیٹیو تھے. ان اے سینس کہ ہمیں بہت ایک ان ڈیپتھ انہوں نے ویو دیا کیونکہ ان کو کافی عرصہ ہو چکے ہیں اس فیلڈ میں, تو ان کے ساتھ بات چیت کر کے اپنے مسائل ڈسکس کر کے ذرا ہمیں کافی انفارمیشن بھی ملی اور اضافہ بھی ہوا. اور اس کے علاوہ یہ جو ہم نے ڈفرینٹ نیوز رومس میں جا کے ہم نے کام کیا, وہ ہمارے لیے کافی اچھا رہا اس حساب سے کہ ہمیں ایک اندازہ ہوا کہ یہاں یو ایس میں کس طرح سے میڈیا کام کرتا ہے. اور جو ایک چیز میرے لیے بہت حیران کن رہی وہ یہ تھی کہ یہاں ایک بندہ سب کچھ کرتا تھا, جو کہ ہمارے پھر اپنے نیوز روم کے حساب سے مختلف ہے کہ ہمارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو مجھے ایک چیز جو مجھے بہت متاثر کی ہے یہاں پہ کام کے حوالے سے, کہ یہاں پہ ہر بندے نے اپنی ایک ذمہ داری لی ہوئی ہے اور وہ اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے. اگر ایک رپورٹر جا رہا ہے باہر کسی کوریج پہ اور وہ کوریج کسی وجہ سے نہیں ہو جاتی ہوتی ہو پاتی, تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ واپس آ جائے نیوز روم میں اور اپنے ڈائریکٹر کو یہ کہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکے کیونکہ ایونٹ نہیں ہو سکا یا ہمیں لوگ نہیں مل سکے یا کوئی بھی وجہ. اگر ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ان کو سٹوری جو کرنے گئے ہیں وہ نہیں کر پائے, تو وہ وہیں پہ کھڑے ہو کے دوبارہ سے ایک نئے طریقے سے ایک نئی سٹوری ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. یہ چیز میرے لیے ذرا نہیں تھی کیونکہ ہماری طرف ڈفرینٹ سین ہوتا ہے کہ ایک اگر آپ گئے ہیں تو آپ وہی سٹوری کریں گے, اگر ہو گئی تو ٹھیک, نہیں ہوئی تو آپ واپس بھی آ سکتے ہیں.
اچھا, یعنی آپ کیونکہ آپ کو کوئی گائیڈ کوئی اور کرتا ہے, آپ کی انسٹرکشنز کہیں اور سے ملتی ہیں, آپ خود کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے؟
نہیں, ہمیں بہت زیادہ فریڈم اس سینس میں نہیں ہوتا کہ ہمارا نیشنل ٹیلی ویژن ہے, اس کو ذرا میں دوسری طرح سے بات کو لوں گی کیونکہ ہماری اٹیچمنٹ ریجنل چینل میں تھی تو ان کا اسکوپ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ایز کمپیئر ٹو دا چینل ویئر آئی ایم فرام. تو ہم تو نیشنل انٹرنیشنل نیوز سبھی لیتے ہیں, لیکن یہاں پہ کیونکہ ذرا تھوڑا چھوٹے اسکیل کا تھا لیکن کام بیسک تو آپ کا سیم ہی ہوتا ہے, پروڈکشن تو آپ چھوٹے میں کریں بڑے میں کریں آپ کی سیم ہی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ جو چیز مجھے متاثر کی ہے کہ اگر آپ کی ایک ڈیوٹی ہے کہ آپ نے ایک اسٹوری فائل کرنی ہے دن کی, تو وہ آپ نے کرنی ہے, چاہے وہ اسٹوری ہو جو آپ نے صبح ڈیسائڈ کی ہے یا چاہے وہ ہو جو آپ کو دوپہر 2 بجے پتا چلے کہ بھائی صبح والی پہ تو کام ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی انفارچونیٹ ریزن آ گیا, تو آپ پھر نئی اسٹوری ڈھونڈتے ہیں اور پھر نئی اسٹوری فائل کرتے ہیں. डेडलाइन आपने मीट करनी है, टारगेट है आपका कि आपने एक स्टोरी देनी है.
अच्छा.
अब वो आपने कैसे अचीव करना है ये आपका क्या.
तो
ये चीज काम के हवाले से मुझे बहुत मुतासर.
तो कितने टीवी चैनल्स को आपने विजिट किया.
हमारा अपना था, एक तो अटैचमेंट पे हम गए थे वहाँ पे किया था, दूसरा हमने यहाँ पे वॉइस ऑफ अमेरिका को विजिट किया, तीसरा मैंने अपने तौर पे कोशिश की कि मैं फॉक्स न्यूज को कर लूँ. तो हमारे इंटरेक्शन विजिट काफी सारे रहे हैं इस ट्रिप के दौरान.
तो कोई खास चीज जो आप समझती हैं कि आप चाहेंगी कि उसकी एप्लीकेशन पाकिस्तान वापस जाकर करें.
एक तो जो मुझे चीज बहुत मुतासर की है वो ये है कि बेशक ये लोग थोड़े छोटे स्केल से काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ये 2-3-4 बार कंफर्म कर लेते थे यहाँ. क्योंकि हमारा प्राइवेट चैनल है थोड़ा सा, तो वहाँ पे हमने अक्सर ये चीज देखी है कि हम एक न्यूज ब्रेक कर देते हैं और वो नहीं होती. लेकिन यहाँ पे मैंने ये चीज नोटिस की है स्पेसिफिकली कि इतने छोटे अगर रीजनल चैनल भी है तो उसमें इस चीज का खसूसी तौर पर ध्यान रखा जाता है कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी ना डालें जिसके बारे में आप कंफर्म नहीं है. तो ये चीज मुझे बहुत मुतासर की है.
ब्रेकिंग न्यूज का क्रेज नहीं है यहाँ पर.
ब्रेकिंग न्यूज का क्रेज नहीं है और जो न्यूज आप दे रहे हैं आपको 100% श्योर होना चाहिए कि वो आप ऑथेंटिक ही दे रहे हैं.
तो ये चीज आप चाहेंगी कि आप वापस जाएं. तो
इस चीज को मैं चाहूंगी कि हम जब वापस जाएं तो हम अपनी रिपोर्ट्स में भी अप्लाई करें, क्योंकि हम थोड़ा सा फिगर्स वगैरह में आगे पीछे हो जाते हैं, ज्यादा रिसर्च वगैरह थोड़ा सा अवॉइड कर जाते हैं.
तो रिसर्च बहुत जरूरी है.
रिसर्च बहुत होती है, इनको बेशक 2-3 जाना पड़ जाए, एक बंदे को कॉल करनी पड़ जाए, बार बार ये करते हैं, लेकिन ये उस टाइम तक उस चीज को अपने स्क्रिप्ट में अपने पैकेज में नहीं ऐड करते जब तक इनको कंफर्म ना हो जाए कि ये जो मैं बोल रहा हूँ जो लिख रहा हूँ वो सच है.
तो कोई और यहाँ के सिस्टम्स देखे आपने इनके अलावा, वो कैसे लगे, कौन सा सिस्टम सबसे अच्छा लगा.
बाकी इनके मीडिया में यही है कि मुझे इनके MMJ वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा है कि जमाना तेज हो गया, अब लोगों को भी तेज होने की जरूरत है. तो अगर आप एक काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 2-3 कर लेंगे तो आप और अच्छे हो जाएंगे. तो मल्टीटास्किंग का जो एक वो मैंने प्रैक्टिकली देखा है चीज, वो मुझे अब अंदाजा हुआ है कि भाई अगर आप जाते हैं शूट पे तो आप कैमरा भी कर सकते हैं, आप हर चीज कर सकते हैं.
अच्छा.
और दूसरा मैं ये कहूंगी कि एक चीज जो शायद मेरी पर्सनल उसपे है कि मैंने एक नोटिस किया कि यहाँ पे पंक्चुअलिटी एक वाकई हकीकत है. आपका बस टाइम एक दफा डिसाइड हो गया है तो हो गया, आपने उस पर पहुंचना ही पहुंचना है. जैसा हमारे यहाँ थोड़ा सा होता है ना, जैसे एक मीटिंग रखी गई है तो अब लोगों का इंतजार हो रहा है कि वो जमा हो जाए, तो 10-15 मिनट उसी में ही लग गए. उस चीज को मैंने बहुत ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे इस तरह से नहीं है, जो है वो है, जो नहीं है उसने मिस कर दिया, ये उसका अपना नुकसान है. कोई चीज किसी के लिए रुकेगी नहीं.
और यहाँ की सड़कें, यहाँ का दूसरे सिस्टम जो आपने देखे, कोई कल्चरल शॉक लगा, कोई माहौलियाती शॉक लगा यहाँ पर आकर.
कल्चरल शॉक के हवाले से तो मैं ये बात जरूर कहूंगी कि मैं जब अमेरिका आ रही थी तो मेरे माइंड में एक बिल्कुल डिफरेंट इम्प्रेशन था अमेरिकन का. और अगर मैं आपको फ्रेंकली बताऊं तो मैं कुछ इस चीज को लेकर परेशान भी बहुत थी, क्योंकि मैं जाती तौर पर थोड़ी सी रिजर्व हूँ और मुझे इस चीज की बहुत परेशानी थी कि हाँ मतलब एक महीने के लिए जा रहे हैं, एक महीने इतना टाइम नहीं होता कि आप जिसमें से 1-1.5 हफ्ता तो सिर्फ अपने आपको एडजस्ट करने में लगा दें, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो इसको मैं चाह भी नहीं रही थी कि मैं इस तरह से जाया कर लें इसका कुछ टाइम. तो मेरे लिए ये चीज बहुत हैरानकुन भी रही है कि यहाँ के लोग इंतहाई फ्रेंडली है. आपके पास आएंगे, आपसे सवाल करेंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या मसाइल है, आपके कंट्री के बारे में पूछेंगे. और बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने कंट्री के एम्बेसडर बन के आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप उनको इन्फॉर्म कर रहे होते हैं. क्योंकि हमारे कंट्री का जो इमेज था इससे थोड़ा दुख भी हुआ है, लेकिन ये है कि जैसे कि हम अफसोस करें हम ये कर सकते हैं कि हम इसको बदलने की कोशिश करें. तो हमारे कंट्री का जो थोड़ा इमेज था वो इतना अच्छा नहीं था उनके पास.
तो आपने तो उसको कैसे बेहतर बनाने की कोशिश की, किस तरह से.
मैंने उनको फैक्ट्स बताए, क्योंकि हमने जब भी जिसको भी बताया कि पाकिस्तान से हैं हम, तो सबसे ज्यादा सवाल हमसे यही किया गया है कि पाकिस्तान में तो वॉर चल रही है, तो मीडिया से मतलब इस तरह का इम्प्रेशन उनको आया. तो हमने उनको बताया है कि भाई रियलिटी ये नहीं है, कुछ चीजें हैं खराब, लेकिन हम वहाँ रहते हैं, हमारी एक नॉर्मल लाइफ है, एक बिल्कुल ठीक लाइफ है, हमारा सिस्टम है, हमारी डेमोक्रेसी है, हर डिपार्टमेंट अपना सही से काम करे, लोग सही से काम करे, वेमेन को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, औरतें आगे आ रही हैं हर फील्ड में, आगे आ रही है. फैक्ट एंड रियलिटी कुछ और है.
अच्छा, तो ये आप समझती हैं कि इस दौरे का एक मकसद आपका जो था वो ये अचीव हुआ कि न सिर्फ ये कि आपने यहाँ से सीखा बल्कि इनको भी कुछ सिखाया.
बिल्कुल ऐसा ही है. मुझे लगता है कि जब हम ग्रास रूट लेवल पर जाते हैं جس طرح میں جب آ رہی تھی تو میرا امریکنز کے بارے میں یہ خیال تھا کہ ان کے کوئی فیملی ویلیوز نہیں ہوتے, یہ تو بس انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور یہ بس اپنی منمانی کرتے ہیں, یہ کسی کا خیال نہیں کرتے, ایون میرے پیرنٹس کا بھی نہیں کرتے. لیکن جب میں یہاں آئی ہوں میں یہ دیکھ کے حیران رہ گئی ہوں کہ میں کسی ایسے بندے سے نہیں ملی جس نے مجھے یہ کہا ہو کہ بھائی میں اپنے پیرنٹس سے ایک عرصہ ہو گیا کہ نہیں ملی یا بات نہیں کی. جو میرے مائنڈ میں تھا کہ یہاں پہ تو پانچ پانچ چھ چھ سال لوگ اپنی فیملی سے نہیں ملتے, وہ بالکل اپوزٹ تھا. یہاں پہ ہے آپ, ہو سکتا ہے آپ کے پیرنٹس, آپ سنگل ہوں لیکن آپ ایک الگ گھر میں رہ رہے ہوں, لیکن آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں, آپ ان کے ساتھ اپنے ویک ڈیز میں سے ٹائم نکالتے ہیں, آپ ان کے ساتھ فیملی ٹائم اچھا اسپینڈ کرتے ہیں. اور باقی پھر پاکستان کے بارے میں بھی, پھر ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی پاکستان میں بھی ہمیں لبرٹی ہے, ہمارے جو پروونشل کیپٹلس ہیں آپ ان میں جا کے دیکھیں, ہمارے میٹروپولیٹن سٹیز ہیں ان میں جا کے دیکھیں, کچھ ایشوز ہیں ان کو ہم ڈینائی نہیں کرتے لیکن جو ریالٹی ہے ہم اس کو بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ اگنور کریں.
آپ کے سارے گروپ میں خواتین ہی تھیں؟
جی, یہ ویمن اونلی تھا پروگرام. ہم 15-17 جرنلسٹ ہیں پاکستان سے, جو آل اکراس پاکستان سے سلیکٹ کی گئی تھی. ہمارے پاس سکھر سے بھی تھی, ہمارے پاس لاہور سے بھی تھی, ہمارے پاس اسلام آباد سے بھی تھی.
تو کیسا رہا سب لوگ مل کر جب جاتی تھیں امریکہ کے مختلف علاقوں میں, تو انجوائے کیا آپ نے؟
میرے لیے تو یہ ایک, آپ کہہ لیں کہ مجھے اب لگتا ہے, میں خود تو شاید ڈی سی میں ہی رہی ہوں اور ایریزونا کے آس پاس گھومی ہوں, میں بہت گھومی ہوں, میں آفس بھی گئی ہوں, لیکن جو میرے ویکینڈ سے میں رکی نہیں ہوں, ہوٹل میں کسی بھی منٹ کو میں نے ضائع نہیں کیا. لیکن جب ہم واپس آئے ہیں ڈی سی میں, سب لوگ اپنے اٹیچمنٹ سے واپس آ گئے, اور جب ہم نے ڈسکشنز کی تو اب مجھے لگتا ہے جیسے میں نے ایک طرح سے صرف ایک اسٹیٹ نہیں کافی ساری اسٹیٹس گھوم لی ہیں. کیونکہ میری جو ڈفرینٹ کولیگز گئی ہیں, جو فار انسٹنس ٹیکساس گئی ہیں, اور جو انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا, جو انہوں نے مجھے وہاں کی چیزیں بتائی ہیں, اور جب ہم نے اپنی اپنی اسٹیٹس کے کمپیریزن کیے کہ اچھا میری اسٹیٹ میں تو ایسے تھا اور تمہاری میں ایسے تھا, تو اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے صرف ایک اسٹیٹ نہیں دیکھی, میں نے بہت ساری اسٹیٹس دیکھی. تو وہ ایک اچھا خاصا ہمارا ایک مٹیریل تھا جو ہم نے ایکسچینج کی ہے, جو انفارمیشن تھی. تو میں اگر جا کے امریکہ کے بارے میں بات کروں یا کچھ کسی کو بتانا چاہوں, تو میرے خیال سے میں کانفیڈنٹلی یہ کہہ سکوں گی کہ میں امریکہ کے کافی حصے کی بات کر رہی ہوں, صرف ایک اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہی.
بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ رویش رفیق, آپ نے ہمارے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی کے سننے والوں کے لیے اپنے بہت قیمتی وقت سے آج کے پروگرام کو سمیٹنے کا وقت ہوا. اور ایک بار پھر ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ ہمارے آج کے پروگرام کی مہمان کون تھی. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہماری آج کی مہمان تھی انٹرنیشنل سینٹر فار جرنلسٹ یا آئی سی ایف جے اور امریکی محکمہ خارجہ کے تعاون سے یہاں امریکہ میں ایک تربیتی پروگرام میں شرکت کے بعد پاکستان واپس جانے والی الیکٹرانک میڈیا سے متعلق پاکستانی صحافی خواتین کے ایک گروپ کی کچھ نمائندہ ارکان. اور صرف خواتین صحافیوں پر مشتمل 5 ہفتوں کے لیے تربیت پانے والے اس ایکسچینج گروپ کی نمائندگی کے لیے ہماری مہمان تھی یوما اریزونا میں اپنا تربیتی کورس مکمل کر کے پاکستان واپس جانے والی ایکسپریس نیوز لاہور کی ایسوسیٹ پروڈیوسر اسما تبسم. ہماری مہمان تھی اریزونا کے ایک میڈیا چینل پر ایک تربیتی کورس مکمل کرنے کے بعد پاکستان واپس جانے والی پی ٹی وی اسلام آباد کی رویش رفیق. اور ہم نے دعوت دی تھی ڈینور کولوراڈو کے ایک میڈیا چینل سے اپنا تربیتی کورس مکمل کر کے پاکستان واپس جانے والی سما ٹی وی کراچی کی کاپی ایڈیٹر اور بلاگر امبرین سکندر کو. اور ہماری مہمان ہیں کلیولینڈ اوہایو کے ایک میڈیا چینل سے وابستہ رہ کر پاکستان واپس جانے والی لاہور پاکستان کے دن میڈیا گروپ کی پروگرام اینڈ نیوز اینکر انم کاظمی. ہماری ویب سائٹ پر اس پروگرام کو سننے کے لیے ہمارا لنک ہے urduvoa.com. اور ہمارے مہمانوں کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/voaurdu اور ہمارے دوسرے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahizindagi اور facebook.com/yasminjameelvoaurdu. اور ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ ہم نے پاکستان کے انصافی خواتین سے گفتگو گزشتہ دنوں ان کی پاکستان روانگی کے موقع پر ریکارڈ کی تھی. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.